ये नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के वर्तमान अधिवेशन का आज रात 12 बजे हो रहा है अंत। प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने रखी दलगत धारणाएं। अछाम में बाढ़ व भूस्खलन के कारण 23 लोगों की हुई मौत। उद्धार और राहत के काम में कोई कसर बाकी न रखने का गृहमंत्री ने किया निर्देश। पर्व त्योहारों को लक्षित कर विभिन्न 41 जिलों के 45 स्थानों में संचालित हुई सुपथ मूल्य की दुकानें। और भारतीय राज्य झारखंड के हजारीबाग में बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद के दोनों ही सदनों के अधिवेशनों का आज रात 12 बजे अंत हो जाएगा। संसद अधिवेशन का अंत होने के कारण राष्ट्रीय सभा के आश्विन 2 गते के लिए निर्धारित बैठक स्वतः रद्द हो गई। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय सभा ने सूचना के जरिए दी है। बता दें कि नेपाल के संविधान अनुसार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का आज अंत होने जा रहा है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में दलों के नेताओं ने दलगत धारणाएं रखी। बता दें कि प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक इस कार्यकाल की अंतिम बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि उनकी सरकार के साथ ही संसद भी परमादेश से आई है, इसलिए सबके साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि अछाम दाचुला सहित अलग अलग जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित नागरिकों को क्षतिपूर्ति मुहैया कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसी तरह प्रतिनिधि सभा की बैठक में नेकपा एमआलए के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि इस संसद ने संविधान के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाने में भूमिका निभाई है। आगे उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी न मिट सकने वाली उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी न मिट सकने वाले काम हुए हैं और राष्ट्रीय स्वाधीनता को लेकर महत्वपूर्ण काम हुए हैं। वहीं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ने पिछले संसद विघटनों के जिक्र के साथ ये कहते हुए खुशी जताई कि गठबंधन की सरकार इसे निरंतरता देने में कामयाब हुई। प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक में नेकपा एस के नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो लगायत ने अपनी अपनी धारणा रखी थी। अछाम के विभिन्न स्थानों में आई बाढ़ व भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। सभी मृतकों की शिनाख्त हो गई है। ये जानकारी अछाम के प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण डांगी ने दी। मरने वालों में ढकारी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 के 2 वर्षीय नवीन बुढ़ा, तुरमा खांत गांवपालिका 5 की 17 वर्षीय चांकी शाही, 17 वर्षीय विमला शाही, 45 वर्षीय नेत्र शाही, 36 वर्षीय मनीषा शाही, 17 वर्षीय कल्पना शाही, 13 वर्षीय सुंदर शाही, 1 वर्षीय मेनिका शाही, 3 वर्षीय कल्पना शाही, 21 वर्षीय भावना शाही शामिल हैं। ये जानकारी पुलिस ने दी। इसी तरह कमल बाजार नगरपालिका 6 की 30 वर्षीय अमृता कामी, 17 वर्षीय समिता कामी, 21 वर्षीय अर्धना कामी, 9 वर्षीय निखिल कामी, 36 वर्षीय मैन कला कामी, 15 वर्षीय गीता कामी, 12 वर्षीय सीरु कामी की मौत हुई है। साथ ही इस हादसे में कमल बाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 8 ढुंगला में एक ही परिवार के 26 वर्षीय गंभीर दमाई, 23 वर्षीय भाना दमाई, 6 वर्षीय डिग्रा दमाई, 3 वर्षीय कलू दमाई, 4 वर्षीय कल्पना दमाई की मौत की जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय अछाम के प्रमुख डीएसपी डांगी ने दी। दूसरी तरफ ढकारी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 के मोतीराम बुढ़ा रिमाल की मौत चायरा नदी की बाढ़ में बहने से हो गई। जिले के 3 स्थानीय तहों के विभिन्न 5 स्थानों में 10 लोग गंभीर रूप में घायल भी हो गए। घायलों में से 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से प्रादेशिक अस्पताल सुरक्षित ले जाया गया, वहीं बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल और स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं में चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ से कैलाली में करीब 1500 घर डुबान में हैं। डुबान क्षेत्र में उद्धार कार्य के लिए पुलिस की टोली को परिचालित कर लोगों को सुरक्षित स्थानों में रखा जा रहा है। ये जानकारी डीएसपी वेद जोशी ने दी। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों से उच्च सतर्कता अपनाने का भी आग्रह किया गया है। इसी तरह लगातार हो रही बारिश की वजह से बांके स्थित राप्ती नदी ने भी खतरे का स्तर पार कर लिया है। यहां पानी का स्तर 6 मीटर पार हो चुका है। लगातार बारिश के कारण राप्ती नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। इस पर किसी दुर्घटना के अंदेशे के मद्देनजर जिला प्रशासन कार्यालय बांके ने नदी तटीय क्षेत्र में रह रहे लोगों से सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। बर्दियार में भी लगातार हो रही बारिश के कारण विभिन्न नदियों और नालों में आई बाढ़ की वजह से बस्तियां डूबान में हैं। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के कारण जिले की राजापुर और ठाकुर बाबा बस्ती डूबान में हैं। बर्दिया लगाए आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बबई नदी भी उफान पर है। गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने अछाम में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में लापता हुए लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने का निर्देश किया है। मंत्री खान ने गृह प्रशासन को घायलों का उद्धार करने के लिए जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर भेजने का निर्देश किया। गृहमंत्री खान ने गृह सचिव टेक नारायण पांडे, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणेन्द्रमणि पोखरेल और विपद तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोराला को घायलों और प्रभावितों के उद्धार के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्थापन करने का निर्देश किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेंशन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
बाकी समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा ने कहा कि वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान का प्रयोग मुख्य तौर पर मानव जीवन को सुखी और सहज बनाने के लिए होता रहा है। आज काठमांडू में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा 10वें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा ने यह बात कही। आगे उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रविधि के विकास, वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन, आविष्कार और इनके संरक्षण के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि विज्ञान प्रविधि हमेशा समानता, समाजवाद और न्याय की ओर हमें ले जाती है। आज पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस टाडा में 10वें विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि विज्ञान हमेशा सही और तार्किक तथ्यों की वकालत करता है और हमेशा समानता तथा न्याय के पक्ष में खड़ा रहता है। सरकार ने दशहरा, दीपावली और छठ पर्व मनाने के लिए घाटी से अपने घर जाने वाले यात्रियों को लक्षित कर आज से अग्रिम टिकट बुकिंग को खुला किया है। बता दें कि यातायात व्यवस्था विभाग ने आज लंबी और मध्यम दूरी के यातायात साधनों के लिए अग्रिम टिकट बुकिंग को खुला करने का निर्णय किया था। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष विजय बहादुर स्वार ने बताया कि काठमांडू के नया बस पार्क, चावहेल, गौशाला, कोटेश्वर, सुंदारा और कलंकी लगायत स्थानों से अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू की गई है। आज देशभर में निर्माण और तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा आराधना की गई। आज के दिन विशेषकर वाहनों, उद्योगों, कल कारखानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विगत के दिनों में यह पूजा तराई मधेश क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ी जिलों में भी विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से की जाने लगी है। बता दें कि हर साल आश्विन एक गति के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य झारखंड के हजारीबाग में आज पुल से शिवना नदी में एक बस गिर गई। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 12-13 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार घायलों को हजारीबाग के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एएनआई ने हजारीबाग के एसपी के हवाले से बताया कि यह बस गिरिडीह से रांची जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस में सवार लोग रांची के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। यह हादसा चतरा से बगोदर जाने वाले NH100 पर हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद के वर्तमान अधिवेशन का आज रात 12 बजे हो रहा है अंत। प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने रखी दलगत धारणाएं। अछाम में बार बार भूस्खलन के कारण 23 लोगों की हुई मौत, उद्धार और राहत के काम में कोई कसर बाकी न रखने का गृहमंत्री ने किया निर्देश। पर्व त्योहारों को लक्षित कर विभिन्न 41 जिलों के 45 स्थानों में संचालित हुई सुपथ मूल्य की दुकानें और भारतीय राज्य झारखंड के हजारीबाग में बस दुर्घटना में 7 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।